राधिका जी, आपने हमारी पिछली मुलाकात में कहा था कि अगर किस्मत ने हमें फिर से इत्तेफाक से मिलवाया तो आप मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेंगी। माधव ने राधिका का ध्यान दो दिन पहले उनके बीच हुई बात की ओर खींचा। परिणाम स्वरूप राधिका के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। माफ कीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने आपसे दोस्ती कर भी ली तो उसे निभा पाऊंगी। शायद आप बीती बातें भुला दें, पर ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई शिकवा या शिकायत है, बस जो रिश्ता पहले रहा हमारे बीच, उसके बाद मैं आपके साथ सहज नहीं हो सकूंगी। राधिका ने आज बिना घबराए सच्चाई को फेस किया था, अपनी उलझन उसके साथ साझा की थी, जिसे सुनकर माधव के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए थे। सहज तो कुछ मिनट पहले ही थी आप मेरे साथ। हाँ, अगर आप मुझे अपनी दोस्ती के भी काबिल नहीं समझती तो ये एक अलग बात है, और अगर ऐसा है तो आप साफ साफ कह दीजिए, मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगा। चेहरे पर गंभीर भाव लिए माधव उसे ही देख रहा था, और उसकी बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए थे। परेशान निगाहों से वो उसे देख रही थी, उसके माथे पर उभरी लकीरें उसकी चिंता जाहिर कर रही थीं। ऐसा नहीं है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं एडमायर करती हूँ आपको, आपके दिल से बहुत इज्जत करती हूँ, पर दोस्ती नहीं कर सकती मुझसे? क्यों? माधव ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। राधिका उसका सवाल सुनकर पल भर को सक पका गई। लगा मानो मन की चोरी पकड़े जाने का भय सताने लगा हो उसे, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और उसी के अंदाज में उल्टा उसी से सवाल पूछ बैठी। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? राधिका ने भौं उछालते हुए उसे देखा, पर माधव जरा भी ना घबराया। उसने सहजता से हामी भरते हुए जवाब दे दिया, बिल्कुल पूछ सकती है, और मैं आपके इस सवाल का जवाब भी जरूर दूंगा। इसके बाद उसने पल भर ठहरते हुए गंभीरता से जवाब दिया, सालों पहले जब मैं आपसे मिला था और अब भी हमारी जितनी मुलाकात हुई है, उसमें जितना मैंने आपको जाना है, आप एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और निडर लड़की हैं, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। जो बहादुर है, दुनिया क्या कहेगी इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदार है और अपने परिवार को अकेले संभाल रही है। आपका व्यक्तित्व और स्वभाव हमें अच्छा लगा। आपसे मिलने पर, बात करने पर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सालों पहले भी मैं आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर अब जब सालों बाद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है, आपसे फिर से मिलवाया है, तो मैं अनजाने में हुई अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। आपसे दोस्ती का पवित्र रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहते, जिनसे कोई रिश्ता ना होते हुए भावनात्मक बंधन जुड़ जाता है और वो उनकी जिंदगी में एक खास जगह बना लेते हैं। आप मेरे लिए उन्हीं लोगों में से एक हैं। आपको लेकर मेरे मन में किसी तरह की कोई गलत भावना नहीं है, बस मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे दोस्ती करती हैं तब भी मैं बेवजह आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। हम दोनों पर हमारे परिवारों की जिम्मेदारी है और हम एक सी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो जब कभी मन व्याकुल हो और किसी ऐसे शख्स से बात करने को जी चाहे जो आपकी बात सुने, आपको समझे, आपकी परेशानी में काम आ सके, तो याद कर लीजिएगा मुझे, निराश नहीं करूंगा आपको। ये सब बोलते हुए माधव जितना गंभीर लग रहा था उतना ही संजीदा भी था। राधिका कुछ पल एकटक उसे तकते हुए अपने ही ख्यालों में खोई रही। कुछ था माधव की निगाहों में जो उसके मन को व्याकुल कर गया था। उसकी छठी इंद्री उसे कुछ इशारा कर रही थी, कुछ था जो वो महसूस कर पा रही थी पर कह नहीं पा रही थी। राधिका कुछ पल अपने ख्यालों में खोई अपलक माधव को तकती रही, फिर उसने अपनी पलकों को झपकाया और माधव पर से निगाहें फेर लीं। सोचती हूँ मैं इस बारे में, आपका कार्ड है मेरे पास, एक दो दिन में जवाब दे दूंगी आपको। आप मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट करने में इतना सोच रही हैं और इतना झिझक रही हैं, जैसे मैं आपसे दोस्ती करने को नहीं कह रहा बल्कि शादी के लिए आपको प्रपोज कर रहा हूँ। माधव ने तो राधिका को दोस्ती का हाथ थामने में इतना झिझकते देखकर हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहा, पर उसकी बात सुनकर राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चौंकते हुए हैरानगी भरी निगाहों से उसे देखा। राधिका का ये रिएक्शन देखकर माधव बेफिक्री से मुस्कुरा दिया। मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली मत लीजिए मेरी बात को, और जितना सोचना है सोच लीजिए, उसके बाद आराम से बेझिझक्कू से अपना फैसला बता दीजिएगा। भले ही रिश्ता दोस्ती का होगा पर साथ उम्र भर निभाना होगा, तो अच्छे से सोचने समझने के बाद ही कोई भी फैसला कीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके कॉल का। आखिरी बात माधव ने बेहद संजीदगी से कही और राधिका पर से निगाहें हटाते हुए बोला, चलिए चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। राधिका ने सर हिलाया और उलझी हुई सी पलटकर आगे चलने लगी। दोनों मेन रोड पर पहुंचे तो अक्षय समेत दोनों लड़कियां एक दुकान के बाहर खड़ी कॉफी पी रही थीं और साथ ही चिप्स खाते हुए अक्षय से बातें भी कर रही थीं। अर्पिता की कोहनी पर बैंडेड लगी हुई थी, शायद अक्षय ने उसके जख्म पर बैंडेड लगा दी थी। अर्पिता तो अक्षय के साथ यूं फ्रैंक हो रही थी जैसे उसे बचपन से जानती हो, और यही उसका नेचर था, बहुत कम वक्त में लोगों से घुल मिल जाती थी। आप दोनों कुछ लेंगे? अक्षय ने उन दोनों का वहां आते ही सवाल किया, जिस पर दोनों ने सौम्यता से इनकार कर दिया। नहीं, बस अब घर चलेंगे, पापा इंतजार कर रहे होंगे। राधिका को अब बस घर जाना था। उसकी बात सुनकर अक्षय ने माधव की ओर देखा। हम भी अब घर चलेंगे,
शिखा अभी तक घर नहीं पहुंची है, घर पर मम्मी परेशान हो रही होंगी। दी, आपकी स्कूटी कहाँ है? सब बात कर ही रहे थे कि अर्पिता ने अपनी चील सी तेज नजरें घुमाते हुए वहां कतार में खड़ी गाड़ी बाइक स्कूटी में अपनी दी की स्कूटी को ढूंढते हुए उससे सवाल किया। खराब हो गई है, आ ही रही थी यहाँ तो रास्ते में धोखा दे दिया उसने मुझे, राधिका ने ये बोलते हुए अजीब सा मुंह बनाया। शायद इस मुसीबत के वक्त पर अचानक स्कूटी के धोखा दे देने से जो परेशानी उसे उठानी पड़ी उसके कारण इरिटेट थी वो। अर्पिता अब तक उसकी स्कूटी तलाश रही थी, अब उसने चौंकते हुए निगाहें राधिका की ओर घुमाई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए हैरानगी से सवाल किया, तो आप उसे रास्ते में ही छोड़ आई? पास में ही गैरेज था तो वहां ठीक करने के लिए दे आई हूँ, राधिका ने शांत लहजे में सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्पिता ने फिर उस पर सवाल दाग दिया, तो आप यहाँ तक क्या पैदल आई हैं? अर्पिता अब भी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। राधिका ने अब की बार उसके इस फिजूल के सवाल को सुनकर खींचते हुए उसके सर पर चपत लगा दी।